शांति। आज मीठे बाबा के 23-26 के महावाक्य हैं और बाबा ने संगम युग पर बहुत सारे सूत्र दिए। जैसे बाबा कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर की स्थिति है। एक एक पल अनमोल है और इस अनमोल पलों को जीने के लिए अगर हम ये समझ लें कि संगम युग चढ़ती कला का युग है, तो हम सबकी भी कलाएं चढ़ती रहे और हमको देखकर औरों की चढ़ती रहे। क्योंकि बाबा ने कहा ना, हे अर्जुन, जो कर्म तुम करोगे तुम्हें देखकर दूसरे करेंगे। नीचे बच्चे, ये संगम युग चढ़ती कला का युग है, इसमें सभी का भला होता है। इसलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। जिसको आचरण से ज्ञान देना कहते हैं, कि जब हमारा आचरण श्रेष्ठ होता है तो हमें देखकर औरों का भी आचरण श्रेष्ठ होने लग जाए। बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। क्यों बधाइयां देते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। देवत्व की प्राप्ति तुम ही करते हो, कोई और नहीं। तुम भी रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं, बधाइयां इसलिए दे रहा है कि मैं नहीं बनता, मैं केवल बना देता हूं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते। तुम आत्माएं पतंग हो और तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, जितना उड़ सको। हा? उड़ाने वाला तो वही है, लेकिन स्वयं का पुरुषार्थ भी है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ये है अमर कथा, कौन सुना रहे हैं दुनिया में? अमर कथा किसने सुनाई है? भगवान शिव के लिए ही अमर कथा का गायन है। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, तीसरी की कथा कहो, तीनों मुख्य हैं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? सत्संग तो इसने भी बहुत किए। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। वहां तो सब मनुष्य देखने में आते हैं, कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते, स्वामी शिवानंद जी कथा कहते हैं। हाँ? भारत में ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है, माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं। तो वहां मनुष्य को देखना पड़ता है, लेकिन यहां तो वंडरफुल बात है। तुम्हारी बुद्धि में कौन है परमात्मा? तुम कहते हो अभी बाबा सामने आया है। निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वो ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, यहां कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते। और कहां भी जाओ तो सारे वर्ल्ड में कोई ना कोई तो मूर्ति होगी सामने, कोई ना कोई साकार में बैठा होगा। यहां तो सुप्रीम बाप कहते हैं, जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता, वो निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। यह बिल्कुल नई बात हुई। जन्म बाई जन्म तुम सुनते आए हो, ये फलाना पंडित है, ये गुरु है, ढेर के ढेर नाम है। भारत तो बहुत बड़ा है, जो भी कुछ सिखाते समझाते वो मनुष्य ही है। मनुष्य ही शिष्य बने, अनेक प्रकार के मनुष्य। फलाना सुनाते हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते, हे पतित पावन आओ, वही आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, कल कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है, उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। तुम यहाँ जो बैठे हो, तुम्हारे में भी कई बच्चे कैसे हैं? बाबा ने कहा, कुछ कच्चे हैं और कुछ पक्के हैं, क्योंकि आधा कल्प जो देह अभिमान की मिट्टी है ना, इसको छुड़ाने में बहुत वक्त लग जाता है, काफी कस के जम जाती है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी इस एक जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है, उसको परमात्मा बैठ समझाते हैं, आत्मा ही संस्कार ले जाती है, कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूं, परंतु आत्मा अभिमानी तो कोई है नहीं। बाप समझाते, इस भारत में सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे, जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे वही फिर इस समय आकर क्या बनेंगे? वही फिर आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हैं, देही अभिमानी रहना ही भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, देही अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पार्ट बजाती है, ये उनके ऑर्गन्स हैं। अब बाप बच्चों को कहते, मनमना भव। बाकी कोई कहे सिर्फ गीता पढ़ने से राज्य भाग मिल सकता है? नहीं, कंठाग्र करने से कुछ नहीं होगा। कंठाग्र हो जाने से हम दूसरों को तो सुना सकेंगे, लेकिन जब तक आचरण में नहीं होगी, तो बाबा ने कहा ऐसे राज्य भाग नहीं मिलेगा। मनमना भव बनना पड़ेगा, मध्याजी भव भी बनना पड़ेगा। तुमको इस समय कालदर्शी बनाया जाता है, रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। जो सूर्यवंशी देवताएं थे, उनमें कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान की मूर्त बन गए थे, संभाल लिया था उन्होंने उस ज्ञान को। ज्ञान तो प्राय लोप हो जाएगा, ज्ञान है ही सदगति के लिए। सदगति में दुर्गति में कोई होता ही नहीं, सतयुग में दुर्गति में कोई होता नहीं, वह है ही सतयुग। अभी है कलयुग। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म, ये एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा संगम युगी है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, और ये है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म को सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय एहसास नहीं, उस समय बन चुके हैं, लेकिन अभी हम बन रहे हैं। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है, देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर हैं। तुम्हारी है रूहानी सर्विस, और वो है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती संगम युग पे, आगे है सोशल वर्कर आदि नहीं थे। राजा रानी राज्य करते थे, सतयुग में देवी देवता थे, तुम्हें पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं, पहले पहले शिव का बनाते हैं, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है, तो पूजा तो जरूर उसकी होनी चाहिए। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था। तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा ने निर्विकारी बनाया, फिर होती देवताओं की पूजा, तुम्हें पूज्य थे फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया है, चक्र को याद करो, सीढ़ी उतरते उतरते जन्म जन्मांतर की नीचे उतरते आए, एकदम पट पे आके पड़े हो, अब तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ। पतित पावन आकर भगवान स्वयं पावन मना रहा है। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप बैठ समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा आना कहाँ होता है? मेरा आना भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ, विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। माताओं पर अत्याचार होते हैं, कहते बाबा हमको ये नगन करते, हमको छोड़ते नहीं, बाबा आप हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं द्रौपदी की भी रक्षा हुई। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो। फिर अगर ज्ञान लेने के बाद विकार में गए तो सारा जीवन खलास, फिर एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते पवित्र जरूर बनना है। जो कल्प पहले बने थे वही फिर से पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। और कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते। मुख्य बात याद की है, याद करेंगे। ये जो बौद्धिक पात्र है या मानस पात्र है, इसका परिमार्जन नहीं होगा, मजेगा नहीं, तो ये पवित्रता का सूत्र भी ठहरेगा नहीं। तो बाबा ने कहा पवित्र और कोई रह ही नहीं सकता, मुख्य बात याद की है। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे, फिर ऊंच पद पाएंगे। विष्णु के दो रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया वो देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं। ये स्वदर्शन चक्र घुमाना भी आपने और शंख ध्वनि भी आपने करनी, उनको चक्र की नॉलेज की दरकार ही नहीं है, वहां तो मूवी चलती है। अभी तुम जानते हो हम शांति धाम में रहने वाले, वे निराकारी दुनिया है। आत्मा क्या चीज है यह भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। कह देते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा जो भ्रकुटी के बीच रहता है, इन आंखों से देख न सके। भल कोई कितना भी कोशिश करे, वैज्ञानिकों ने कोशिश की थी, ग्लास बॉक्स में बंद कर दिया था, बंद करके देखा उन्होंने कि देखे आत्मा कैसे निकलती है, लेकिन वो क्रैक हुआ उन्हें समझ में आया। कोशिश करते हैं पता नहीं पड़ता आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बिगड़ उसको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है। लिखा हुआ अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो क्या हुआ, वह मैं सहन नहीं कर सकता। बाप समझाते हैं इतना तेजोमय जिसका वर्णन किया जा सकता है। तो जब वर्णन करते हैं माना अतिशयोक्ति हो जाती है कहीं कहीं। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती पता थोड़ा ही पड़ता है। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे इनमें प्रवेश कर बोलते हैं, आत्मा आकर बोलती है। यह भी ड्रामा में सारा नूंद है, इसमें कोई ताकत की बात नहीं। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, यह साक्षात्कार की बात है, वंडरफुल बात है। बाप कहते हैं मैं आता ही साधारण तन में हूं। आत्मा को बुलाते हैं ना, आगे आत्माओं को बुलाकर पूछते भी थे उनसे, अभी तो तमो प्रधान बन गया ना। बाप आते ही इसलिए हैं कि हम जाकर पतितों को पावन बनाएं। कहते भी हैं 84 जन्म तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे, लाखों वर्ष कह देते। अब बाप समझाते हैं, तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था। बाबा भूतकाल का वो दृश्य सामने ला रहा है कि देखो सामने, राजयोग सिखाया था कब, संगम पर। बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते हैं, कैसे उतरते हैं, फिर कैसे चढ़ते हैं, चढ़ती कला फिर उतरती कला। अभी यह संगम युग है तो सर्व की चढ़ती कला। स्पीड में अंतर हो सकता है, कोई धीमे चढ़ता है कोई बहुत तेज चढ़ता है, लेकिन है सबकी चढ़ती कला। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पार्ट बजाने। सतयुग में दूसरा कोई भी धर्म नहीं था, उनको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर जब वाम मार्गी होने लग जाते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हैं हे भारतवासी, तुम वॉइसलेस वर्ल्ड में थे, निर्विकारी दुनिया में थे, अब ये विकारी वर्ल्ड है, विशेष वर्ल्ड है, अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। जरूर जब ना हो, कोई चीज खत्म हो जाए तभी उसको स्थापित किया जाता है, भगवान का जब ना हो तब तो स्थापना हो। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। रचना रचते कहाँ करेगा, हाँ यहाँ ही करेगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेगा। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचते, तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं। टाइम लगता है ना, पतित से पावन कैसे बने ये विधा शास्त्रों में भी नहीं है। वास्तव में महिमा एक बाप की, उस बाप को भूलने के कारण ही आर्फन अनाथ बन पड़े हैं। लड़ते रहते फिर कहते सब मिलकर एक कैसे हो। भाई भाई है ना, बाबा तो अनुभवी है, भक्ति भी इसने पूरी की है, सबसे अधिक गुरु किसने किए, ब्रह्मा बाबा ने। बाप कहते हैं इन सबको छोड़ो, अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ ना, सर्व का सदगति दाता एक सत श्री अकाल मूरत। कहते हैं ना अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं। बाप समझाते हैं अभी सब पतित हैं, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है ये कोई को पता नहीं है, भारत का कभी भी विनाश नहीं होता, और न कभी प्रलय होती। ये जो दिखाते हैं ना सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ ना सके। बाप समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से, वहां गर्भ महल कहा जाता और यहाँ जेल कहा जाता। सतयुग में गर्भ महल है, आत्मा को पहले साक्षात्कार पहले से ही हो जाता है कि यह तन छोड़कर अब दूसरा लेना है। वहां आत्माभिमानी रहते मनुष्य तो न रचयिता को जानते न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। अभी तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, तुम मास्टर सागर हो। तुम बाबा ने कहा तुम माताएं हो नदियां, ये गोप है ज्ञान मान सरोवर, ये ज्ञान नदियां हैं, तुम हो सरोवर। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ आश्रम था, अभी पतित है। बाप कहते यह सदैव याद रखो। क्या याद रखो, क्या याद रखो, यह सदैव याद रखो, क्या याद रखो। हम आत्मा हैं, एक बाप को याद करना है, सब तज एक भज, ये याद रखो कि और किसी चीज को पकड़ना नहीं है। बाबा ने फरमान दिया कोई भी देहधारी को याद न करो। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ, संसार नश्वर है तो हर चीज क्षणिक है, क्षणभंगुर है। तो बाबा ने कहा इसको भूलते जाओ, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे परंतु परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म करना नहीं है। तूफान आते हैं तब आते हैं जब तुम बाप को भूल जाते हो। ये याद की यात्रा है, और याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह मृत्युलोक की यात्राएं हैं, अमर लोक की यात्रा यही है। तो अब बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद न करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारें भेजते हैं, बाप कहते मुझे बधाई भेजते हो, तत्व ये बधाई तुमको भी स्वीकार हो। तुम बच्चों को भी बाप बधाइयां देते हैं, वास्तव में तुमको बधाइयां हो। क्यों, पुनः आ गया प्रश्नोत्तर पे, क्यों? क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। फिर जो पांचवें दानी होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाइयां देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं, सबकी डोर बाबा के हाथ में, सबको ले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता है, परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की धारणा के लिए मुख्य सार क्या होगा? मुरली तो पूरी हो गई, हाँ? निकालना तो हमको ही है ना। पहली पॉइंट है पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना। दूसरी पॉइंट है, हम अमरलोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्युलोक का कुछ भी याद न रहे, इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म न हो, ये ध्यान रखना। आज का वरदान है, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भाव। क्या भाव? योग्य शिक्षक भाव। कैसे होंगे? जब शिक्षा का संपन्न स्वरूप बन जाएंगे। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा, उनका देखना, उनका चलना किसी को भी शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर साकार बाबा ने क्या किया, आगे बढ़कर बोल के नहीं दिया, कर्म करके शिक्षा दी। कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल देखा, जिसके द्वारा शब्दों में हम कहते हैं बाबा का चरित्र देखा हमने। ऐसा किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना कॉमन बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन बात है। लेकिन सभी पूछते हैं हमें अनुभव चाहिए। एक बार यहां एक संत आए थे तो हम लोग बैठे हुए थे डाइनिंग में, ये देखने गए थे कि सभी प्रेम से भोजन स्वीकार कर ले, एक किनारे बैठे थे। तो आके उन्होंने सीधे बोला, मुझे आपसे दो बात करनी है। मैंने कहा बताएं, क्या कहना है? बोले मैं ये जानना चाहता हूं कि जो कुछ आप लोग ज्ञान सुनाते हैं, बोले इसका किसी ने प्रैक्टिकल किया? तो मैंने कहा किसी ने किया? अरे 9 लाख भाई बहन है। बोला नहीं, मुझे ऐसे को मिलाइए जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो। मैंने कहा चलो कल मिला देती हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल से मिला देती हूँ। तो फिर जानकी दादी से मिलवाया। तो जब जानकी दादी से मिलवाया तो मिले तो फिर उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि कैसे मैं यहाँ आया और मुझे शांति वन से अनुभूति हुई। वो अपनी अनुभूति शेयर करना चाह रहे थे। तो बाबा ने कहा आदमी क्या चाहता है? अनुभव हो। केवल आप वाणी द्वारा लिखे पढ़े रटे हुए वाक्य मत सुनाइए, जो अनुभव में हो। सभी अनुभव चाहते हैं। तो अपने श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। अभ्यक्ति सारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए किस पर ध्यान दो? बाबा ने कहा वाणी की शक्ति पर विशेष ध्यान दो। वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सम्मानजनक बोल ही बोलो। मन जिसको दो वाणी से आदर दो। अभी तक साधारण बोल ज्यादा है, अलौकिक बोल हो, फरिश्ते जैसे बोल हो, हर बोल मधुर हो, अभी इस बात पर अंडरलाइन करो, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। क्योंकि हर आत्मा प्रैक्टिकल देखना चाहती है, और अगर प्रैक्टिकल नहीं तो उनको लगता है अरे ऐसा ही है, जैसे सब जगह है वैसे यहां भी है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम अलग हैं, तो हमारे जीवन में वो झलकना चाहिए।
ओम शांति। कुछ असुविधाओं को सामना करते हुए भी और विपरीत परिस्थितियों में आज दीदी जी स्नेह का सबूत देते हुए दौड़ दौड़ कर हम सभी के बीच में पहुंचे, और इसलिए हम करतल ध्वनि से अवश्य और जोरदार करतल ध्वनि, क्योंकि समय भी बीता जा रहा था, हमको भी संकल्प चल रहे थे। वर्षा दीदी जी के लिए भी बहुत बहुत थैंक्स, आप समय पर तैयार होकर के आए, दोनों ही टीचर एक साथ पहुंचे। हमने सोचा किससे लाभ ले और किससे ना ले तो ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत कल्याणकारी है। और आदरणीय मनोरमा दीदी जी शांतिवन में रुके हुए हैं, आप आज विशेष बाबा के महावाक्य सुनाने हम सभी के बीच में हैं, और समय की पाबंदी के बीच इतना सटीक आपने बाबा के महावाक्य सुना करके समय में पूर्ण किया। दीदी जी इलाहाबाद में रहते, सॉरी प्रयागराज में रहते हैं,
एक ही बात।
और प्रयागराज में कुछ समय पहले, दो वर्ष पहले लगभग, कुंभ का मेला हुआ था। वहां पर सभी ने पूरे यज्ञ के अंदर इतने समाचार, वहां की भव्य दिव्य सेवाएं जो वहां हुई। वैसे तो मेला अपने आप में ही बहुत बड़ा आयोजन होता है, सैटेलाइट से उसके फोटोज निकाल करके पूरे विश्व देखता है, बहुत ही विशेष वो आयोजन होता है। और उसमें भी ब्रह्मा कुमारी के बिहाब पे भव्य मेला, और इतनी बेहद की सेवाएं वहां पर हुई। और मधुबन के भी कितने मधुबन निवासी, कितने पूरे भारतवर्ष से ब्राह्मण आत्माएं उस मेले को देखने वहां पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं, जब ब्राह्मण जाते हैं तो वो अपने हिसाब से रहते हैं, उनको सुविधाएं तो सेंटर को ही देनी होती है। तो बहन जी ने वहां की सेवाओं को उस समय देखते हुए जो विचित्र एक बैलेंस बना करके सबका अवभगत किया, सब जो भी वहां से होके आ रहे थे इतने खुश, और इतनी दीदी जी के वहां की व्यवस्था की महिमा कर रहे थे। सचमुच उत्तर प्रदेश को भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, और दीदी जी जो वहां पर बैठ करके सारा कर रहे थे संचालन, उसके लिए भी साधुवाद, एक तरह से कहेंगे यूपी की भाषा में।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।